अपने निजी शुद्धिकरण की दृष्टि से कुछ कहने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें, कुछ कह सकें। ऑनलाइन जो भक्त सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि अपना आशीष इससे आशीर्वाद दें, कुछ फूटा फूटा हम श्लोक पर बोल सकेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में 10 विषय वस्तु हैं, अत्र सर्वं सर्वश्च स्थानं पुष्णं उतय मन मंत्र ईशान कथा विरोधा मुक्ति। 10 विषय वस्तु श्रीमद् भागवत की 12 स्कंध में, और सभी 12 स्कंध में सभी विषय वस्तु की चर्चा की गई है, लेकिन प्रत्येक स्कंध में किसी प्रत्येक वस्तु को अधिक महत्व दिया गया है, अधिक हाईलाइटेड किया गया है। तो हम कह देते हैं कि ये जो स्कंध है इस चीज की प्रधानता है। इस अध्याय स्कंध साथ चल रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर उति की प्रधानता है, उति तत्व की प्रधानता है स्कंध में। और उति भी दो तरह की होती है, साक्षात्कार बताते हैं, एक शुभ उति एक अशुभ उति। शुभ उति यानी भरत और श्रीला जो आप सब लोग सुन चुके हैं, अशुभ उति यानी रणकृष्ण ने जो कुछ किया। तो एक बार जब ऐसा जानते हैं कि चार कुमार वैकुंठ लोग गए, उनको वहां तक भगवान के दरबार भगवान में जो कि गेट कीपर है जय जी ने उनको रोक दिया, उनको श्राप दिया, और श्राप की वजह से उनको रणाक्षर रणक्षी बन के यहाँ पर आए। यदि सिद्धाय की बात करेंगे तो सिद्धाय में कुल मिलाकर 15 अध्याय है, और शुरू के 10 अध्यायों में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है। जो आखिरी के 5 अध्याय में मिश्र भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, साथ में कार्य और ज्ञान है इत्यादि का वर्णन किया गया, वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया बेसिकली। यदि सिद्धाय की बात करें, सिद्धाय में को 3 विभागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। श्लोक क्रमांक 1 से 18 तक तो जो गृहस्थ भक्त है, जो आदरणीय गृहस्थ भक्त है, उनकी जिम्मेदारियां उनके कर्तव्य बताए गए हैं। फिर श्लोक क्रमांक 19 से 33 तक गृहस्थ भक्त को कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ती है, कुछ धार्मिक कृत्य करने पड़ते हैं, तो उनको किस समय करना चाहिए, किस स्थान पर करना चाहिए, उन सबका वर्णन किया गया है 19 से 33 श्लोक तक। 34 से 42 श्लोक तक अर्चवग्रह की उपासना के महत्व पर जोर दिया गया है। अर्चवग्रह की उपासना का क्या महत्व है गृहस्थ जीवन में, विशेष रूप से ब्राह्मणों का महत्व क्या है, भगवान अच्युत का महत्व, इन सबकी चर्चा की गई है। उन्हें संधि भी देखें कनेक्शन क्या है, कनेक्शन को जिस तरीके से है नारायण ने पिछले श्लोकों में इसे बताया कि ये जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनको देश काल व्यक्ति के हिसाब से आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अपने जो क्रियाएं जो कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो किसी को समर्पित करनी होती है, किसी को अर्पित करनी होती है। तो प्रश्न उठता है किसको अर्पित की जाए जो क्रिया हम कर रहे हैं। ये सब हम जानते हैं, ये संदेह इस बात को स्थापित करते हैं कि भगवान कृष्ण एकमात्र सर्वोच्च व्यक्ति हैं जिनको हमें सारी अपनी क्रियाएं अपने कर्मों का फल अर्पित करना चाहिए। राशि का किसका उदाहरण है आप सब जानते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को ही जब बात है अगर पूजा की तो भगवान श्री कृष्ण को सर्वसम्मति से चुना गया। वहां पता है भीष्म थे, गुरु द्रोण भी थे, सब ने उनको चुना, एक व्यक्ति को छोड़ दे और वो कौन है वो सब जानते हैं। तो हाँ, और श्रीमद् भगवद गीता भी देखे तो 5वें अध्याय के 3 श्लोक में बात स्थापित होती है कि भगवान ही हर यज्ञ के मूल पति हैं, ग्रहण करने वाले पति हैं। और श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध के 31वें अध्याय के 14 श्लोक के तात्पर्य गोपाल जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, किस तरह वो स्थापित करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो हर क्रिया के हर पूरी सृष्टि के मूल है, वो जड़ है, वो रूट है, उनको संतुष्ट करें जैसे संतुष्ट जगत कृष्ण। तो ये तो यम तक का एक भूमिका। आज ही श्लोक की अगर चर्चा करें जो आपका श्लोक है तो बोलते हैं दृष्टा केशा मितो नृणाम अभिज्ञा आत्मताम नृपा तथा देशु हर चर्चा क्रिया है कभी कृता। दृष्टा है देखना, किसने देखा, कभी भी आने ऋषि मुनि का विद्वान जन क्या देखा उन्होंने, अभिज्ञान आत्मकाम कि उस समय के जो ब्राह्मण थे जो वैष्णव थे वो आपस में दूसरे की परस्पर निंदा कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। कब देखा उन्होंने, त्रेतादेश त्रेता कभी उन्होंने देखा कि सच्चा कर सत्युग में सब चीजें नहीं होती थी, सत्युग में तो पूरा जो स्थिति थी उसका जो एक मेन आधारभूत स्तंभ ही था दूसरों को सम्मान देना, यहाँ तक कि आपस में दुश्मनी भी करते थे और तर्क वितर्क भी हो रहे हैं, बहस भी हो रही, तो बहुत महान आदर सम्मान से दूसरे चर्चा करते थे, इसका निरादर नहीं करते थे। इस समय जैसे आगे बढ़ा प्रारंभ हुआ तो मुनिगण ने देखा कि वैष्णवगण ही ब्राह्मण भी आपस में दूसरे विचार है कि इसको रोका जाए, इसको अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, वैदिक संस्कृति पूरी समाप्त हो जाएगी। निर्वाद जो कर रहे हैं वो तो भगवत धाम को छोड़कर नाट में जाएंगे। तो मुनिषीकरण की है हमेशा विशेषता है कि हमेशा संपूर्ण समाज के हित की सोचते हैं। तो इस सोच कर क्या किया, हरे अर्चा उन्होंने योजना बनाई कि अष्टदेवी की उपासना का प्रावधान किया किया गया। अभी ऐसा नहीं कि अष्टदेवी की उपासना केवल अभी कलयुग में ही है, द्वापर युग में ही थी, सभी युगों में अष्टदेवी की उपासना होती रहती थी। अभी सत्य में लोग ध्यान करते थे तो किसका ध्यान करते थे, कोई मूर्ति बनाते थे, अष्ट वगैरह बनाते थे, धूमावश बनाया, उनके कहने पर ध्यान किया। लेकिन त्रेता के बाद के युगों से अष्टग्रह को सार्वजनिक स्थल से लाकर मंदिर के रूप में कि लोग आए और मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करें। लेकिन आप सब जानते हैं कि जैसे ही ये बात आती है अष्टग्रह की उपासना की बात आती है तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य सबसे पहले कौन सा श्लोक डालते हैं, कि जो बात सत्युग में ध्यान करकर त्रेता युग में यज्ञ करकर द्वापर युग में परिचर्या करके मिलता था, अष्टग्रह की उपासना करके मिलता था, वही लाभ सत्युग में किससे मिल रहा है, हरे नाम संकीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, चूंकि प्रभुपाद जी ने पहले कीर्तन की महिमा का बखान किया है तो उनके पता चलने पर चाहें थोड़ा सा कीर्तन की महिमा का बखान करें। कीर्तनस्थ महिमा, तो भक्ति संदर्भ में श्रीजी गोस्वामी 272 और श्रीमद् भागवतम में भी 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में इस बात की चर्चा आती है, बात का वर्णन आता है कि जो हरिनाम संकीर्तन युग है ये ऐसा नहीं केवल इस काल में ही है, कलयुग में ही है, ये सभी युगों में अवेलेबल था, हमेशा रहा है और सेम पोटेंसी सेम शक्ति सब केवल जीवा हिला के हरिनाम का जाप करके भगवत धाम जा सकते थे। तो कोई कह सकता है कि सतगुरु के लोग इतनी तपस्या क्यों करते थे, 50,000 साल तपस्या चल रही है। तो सब आचार्य जी गोस्वामी बताते हैं सतगुरु के जो लोग थे शरीर और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बलशाली हुआ करते थे, इतना उनका शारीरिक बल होता था कि एक स्थान पर बैठकर हफ्ते महीने तो छोड़िए कई सालों तक बिना कुछ खाए पिए बिना सोए भगवान का ध्यान कर सकते थे। अभी हम लोग तो एकादशी रख लेते तो हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ, और मानसिक बल उनका बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, बिल्कुल उनका मन स्थिर रहता था, शांत रहता था, पढ़ना मन में रहता था, निंदा भी कर रहा है सड़ी से निंदा हो रही जहां भी उचित नहीं होते थे। अभी हमें तो गुजरा सा कुछ बस बोल ही एकदम सिरे में बदले की अग्नि आती है, बोला तो बोला कैसे, जब तक उससे बदला ले लिया जाए तब तक मन शांत नहीं होता है, भगवान ने दर्शन करवा अचानक धक्का मार दे जानता नहीं कौन इस तरह का बोले नहीं मन में भाव तो आते हैं। तो कहने का भाव है कि लोगों का मन इतना स्थिर होता था आगे उनको बोला जाता है उन्हें पता चलता था कि अरे हरिनाम की पद्धति है आत्म साक्षात कर दी केवल जीवा है ना, तो सोचते अरे जीवा लेना है बस, तो उनको जानता नहीं था मतलब इसको भक्ति को या तो उनको बड़े बड़े कार्य करने की इच्छा होती है, बड़े बड़े कार्य करते हैं तब उनको जो छोटा सा भी अहंकार है वो तब संतुष्ट होता है, तो इसलिए वो अहंकार नहीं करते। लेकिन पोटेंशियल सभी बराबर थी एकदम, कली काले नाम रूप है कृष्ण अवतार। तो जैसा कि हम जानते हैं श्री भागवतम के 6वें स्कंद के 3रे अध्याय के 27, 28 और 39 श्लोक में यमराज जी घोषणा कर देते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने एक बार भी प्रभु का नाम ले लिया उसने कितने भी पाप किए हों उसको वही मेरे सामने लेकर नहीं आना है, अर्थात वो कितने ही पापी क्यों ना हो कितने ही पाप क्यों ना किया हो एक बार उसने जीवन में नाम लिया तो वो नरक का दरवाजा उसका बंद हो गया, अब वो जन्म दूध के दर्शन नहीं करेगा। यह नाम की महिमा है, अभी आगे थोड़ी देर चर्चा करेंगे। फिर 6वें स्कंद के 2रे अध्याय के 10वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई चोरी करता है, कोई शराब पीता है, कोई अपने जनों के साथ विश्वासघात करता है, परिजनों के साथ गद्दारी करता है, या सबसे जघन अपराध मानते हैं गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संपर्क बनाना, शारीरिक संबंध बनाना वो करता है, ब्राह्मण की हत्या करता है, स्त्री की हत्या करता है, किसी राजा राजा अपने पिताजी की हत्या करता है, राजा की हत्या करता है, गौ माता की हत्या करता है, जितने जघन से जघन पाप कर सकता हो कर चुका हो कि उसने एक बार ही और हर एक शाम में तो भूल दिया, एक बार ही प्रभु का नाम ले लिया तो जितने उसने पाप किए थे भूतकाल में वो सारे खत्म। नाम लेते समय जो पाप कर रहा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, और नाम लेने के बाद जो पाप करेगा उसे उसका फल नहीं आने वाला है। इतनी हरि नाम की महिमा है, आप समझ सकते हैं कि ये महिमा प्राप्त करने के लिए ध्यान करना पड़ता है सही में, इतनी हरि नाम की महिमा। और विशाल चक्रवर्ती पाप को अपनी टीका में इतना भी बोलते हैं जो विष्णु भागवत में बात आती है पश्चाताप की, तो बोलते हैं हरिनाम संकीर्तन ये सबसे अच्छा पछतावा करने का पश्चाताप करने की पद्धति है। क्यों? क्योंकि ये पाप को खत्म नहीं करती, अभी तुम पाप करने की प्रवृत्ति जो जड़ वो क्या है भौतिक इच्छा है, व्यक्ति पाप क्यों करता है भौतिक इच्छा के कारण। तो हरिनाम की जितनी महिमा है वो जड़ ही या भौतिक इच्छा को ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए विशाल चक्रवर्ती पाप अपनी टीका में कहते हैं कि सबसे अच्छी पद्धति हरिनाम संकीर्तन। और उदाहरण देते हैं अचानक अपनी टीका में बोलते हैं अगर इतने महान पाप किए थे कोई पाप उसने छोड़ा नहीं था, अभी वैष्णव से शादी को करता है क्या, कोई नहीं करता जनरली, तो बच्चे करना हो 10 बच्चे काफी बड़ा जगह में पाप है, लेकिन फिर भी देखिए शुद्ध नाम तो छोड़िए नामाभास किया था केवल उन्होंने और उनको सारे पापों से मुक्त हुए, विष्णु दूत के दर्शन और वैकुंठ हो गए। फिर उसी टीका में श्री भागवतम के 6वें स्कंध के 2वें अध्याय के 14वें अध्याय में ये बताते हैं विश्वास चक्रवर्ती पाप संकेतन, तो संकेत हरि नाम का नाम ले रहा है केवल, या परिहास में भगवान का नाम ले रहा है, या केवल म्यूजिकल स्टूडियो में जाके खड़ा हुआ है नाम ले लिया नाम सुन लिया, या उसको हरिनाम की महिमा पता नहीं कि कितना महान हरिनाम का, जैसे दूसरे बोल रहे थे हरे कृष्ण वाले बोल रहे हैं मैं भी बोल देता हूँ, उसने वैसे बोल दिया हरिनाम इतना भी अगर उसने बोल दिया तो उस नाम की इतनी महिमा है कि जितने उसके पाप है भूत वर्तमान और भविष्य समाप्त होने होंगे वो वैकुंठ लोक जाएगा ही जाएगा, प्लस उसके हृदय में रूप गुण नाम लीला भगवान की लीला है स्फुरित हो जाएगी। इतनी महिमा की है आचार्यों ने इस हरिनाम की। जब यहां तक बताते हैं 6वें स्कंध के 2वें अध्याय के 15वें श्लोक में, यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है रास्ते पे जा रहा है मर गया एक्सीडेंट हो गया सांप ने काट लिया या फीवर से रूप मृत्यु के निकट आ चुका है या किसी धार प्राणघातक हथियार से किसी ने हमला कर दिया है, तो एक बार उसने प्रभु का नाम ले लिया तो क्या होने वाला है नरक का दरवाजा बंद है उसका और नरक का दर्शन नहीं करेगा, विष्णु बुद्ध उसको लेके नहीं जा सकते। इसी प्रकार इसी संबंध में दो आचार्य दो रूपी देते हैं उदाहरण समझाने के लिए कि जिस प्रकार सूखी घास को अपनी तुरंत जला देती है उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने एक बार प्रभु का नाम ले लिया हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया जितने पाप हैं उसके जितने उसने किए थे भूतकाल में वर्तमान को भविष्य में जो करने वाला है किसी का फल नहीं आने वाला है, इतना पावर है हरी नाम की महिमा का। दूसरा उदाहरण देते हैं यदि कोई रोगी है वो दवाई खा रहा है डॉक्टर दवाई वो खा रहा है तो उसको दवाई की महिमा नहीं पता है कि दवाई कितनी महान है कैसे वो खत्म होगा, उसको नाम जाने में खा गई बीमार हूँ क्या करूँ, वैसे जिसने हरी नाम की औषधि ले ली तो क्या होगा भव रोग से मुक्ति, इतना हरिनाम का प्रभाव बताया गया है। इवन विशाल चक्रवर्ती पाप तो 6वें स्कंध के 2वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं यार आप लोग बोलते हैं नाम जप कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है परेशान कर रहा है यहाँ वहां दौड़ रहा है, वो तो बोलने के लिए मन लगे या ना लगे आप बस नाम लेंगे तो नाम की कितनी महिमा है कि गुण रूप लीला सब प्रकट हो जाएगा और वैकुंठ हो जाएंगे, इतनी हरिनाम की है हरि से बड़ा हरिनाम। जो थे श्लोक के तात्पर्य प्रभा जी बड़ी सुंदर बात बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा। प्रभा जी बोलते हैं कि हमारे स्कॉन संस्था में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसका नाम बदल देते हैं उसको दीक्षित नाम मिल जाते हैं, क्यों तो बोलते हैं मान लो मैं भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा है अंतकाल में विपत्ति के समय संकट आ गया है, लेकिन यदि वो केवल अपने नाम का ही स्मरण कर ले फलाना फलाना दास तो ये निश्चित है उसकी अगले जन्म में सदगति होगी, ये प्रभा जी बोलते हैं ऐसा प्रभा जी गुणगान करते हैं। तब मुक्ता जी बोलता है कि हरिनाम इतना महान है इतना शक्तिशाली है एक बार नाम मिल जाए सारे पाप खत्म, देखो गुणों के दर्शन हृदय में गुण नाम मिल जाए सब प्रकाशित हो रहा है, तो मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो कई वर्ष होंगे नाम जप करते हुए। उसी कारण उत्तर इस श्लोक में दिया जा रहा है कि क्या कारण है वो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ दिक्कत किधर आ रही है, दिक्कत एक जगह आ रही है, अवज्ञा आत्मता यहाँ आ रही है। जब उन्होंने देखा कि लोग आपस में दूसरे का अनादर कर रहे हैं, वैष्णवगढ़ सोसाइटी का हेड माने जाते हैं, ब्राह्मण लोग सोसाइटी का हेड है, यदि वही आपसी वार्तालाप में एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो बाकी के नीचे वालों को यही नकल करेंगे, सोसाइटी तो खराब हो गई, पूरी सोसाइटी नष्ट हो जाएगी। तो एक ऐसी चीज है वो है वैष्णवों का सम्मान नहीं करना, उनका अपमान करना, ये एक बड़ी बाधा होती है। और प्रभा जी तात्पर्य में बात कर रहे हैं एडवांस वैष्णव की, प्रगतिशील भक्त की, कि प्रगतिशील भक्त जो हैं वो कभी कभी बड़े कार्य क्रियाएं करते हैं, लेकिन जो कनिष्ठ भक्त हैं वो उसकी क्रिया को समझ नहीं पाते, क्रिया को सार को मर्म को पकड़ नहीं पाते हैं, तो उनकी निंदा करते हैं। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि वो कुछ उन्नत वैष्णव है कौन, तात्पर्य में बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने कि अनेक व्यक्तियों को वैष्णव परिवर्तित कर दिया वो वैष्णव है। तो इस बात को ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसी संबंध में और भी बहुत सारी बातें बोली। अभी मैं भी कह सकता हूँ, मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, मैं कुछ कुछ लोगों को पकड़ कर आया हूँ, धोती कुर्ता पहना दिया, तिलक लगा दिया, एक माला टांग दिए, दो तीन तीन माला सब कर रहे हैं, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं भी बोल रहा था वैष्णव हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ वैष्णव की बात जब आ रही है तो परिवर्तन की बात आ रही है। परिवर्तन दो तरीके से होता है, बाहरी आंतरिक। बाहरी बर्तन शर्ट पर हटा दिया, मैंने धोती कुर्ता उसको पहना दिया, कंठ माला लगा दी, तिलक लगा दिया, बता दिया भक्तों के समाज में आचरण कैसा करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ऐसा सिखाने से मैं उन्नत वैष्णव नहीं बन जाता हूँ। उन्नत वैष्णव का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रचार करना, ऐसा प्रचार प्रभा जी बोलते थे प्रचार करने का, हृदय का परिवर्तन, पीछे इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। तो ऐसा प्रचार करना कि उस व्यक्ति की उसकी चेतना को ही बदल देना, उसको उसकी सोच, उसके विचार, उसकी मानसिकता, उसके दृष्टिकोण, उसका दुनिया को देखने का उसका नजरिया है, उसको पूरा बदल देना, उसकी जो आध्यात्मिक कार्य में जो उसकी पूर्व अवधारणा है उसको पूरी तरह परिवर्तित कर देना, उससे गुरु में कितनी श्रद्धा उन्होंने जगा दी है, कितनी शास्त्रों में श्रद्धा जगा दी है, कितना जो शास्त्र विचार है, शास्त्र के निष्कर्ष है, उसको उसकी कितनी श्रद्धा है, उसको बदल देना, जीरो श्रद्धा से पूर्ण श्रद्धा की तरफ लेके आना। उस उन्नत वैष्णव की बात आप तात्पर्य में कर रहे हैं कि उन्नत वैष्णव ऐसे होते हैं, और ऐसे वैष्णव यदि कोई निंदा कर देता है तो निश्चित है कि उसकी बहुत बुरी संगति होने वाली। निंदा वैसे किसी की भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कनिष्ठ वैष्णव हो या मध्यम अधिकारी हो या उच्च उत्तम अधिकारी हो। जैसे आप सब जानते हैं सीसी चतुर चौटा में बात आती है, जब खांडावासी मिलकर चले महाप्रभु से तो पूछते हैं वैष्णव कौन है, तो पहले का जवाब देते हैं जिसने बाद भी प्रभु का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लिया वो वैष्णव है। दोबारा मुलाकात होती है, फिर पूछते हैं भूजा वैष्णव है, वैष्णव कौन है, तब वे क्या बोलते हैं, निरंतर प्रभु का नाम जाप करता है वो वैष्णव है। तीसरी बार मिलते हैं फिर पूछते हैं, फिर महाप्रभु क्या बोलते हैं, जिसको देखकर दूसरे के नाम का जाप कर रहे हैं वो वैष्णव है। तो यहाँ पर इसका मर्म क्या है, बात हो रही है सम्मान की, कि आप किसी का भी अपमान मत कीजिए। वो पहले दिन ही क्यों ना आया हो, पहले दिन उसने मलाई को ना पकड़ लेकर हमें उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है, जिन भक्ति में अपना हित चाहते हैं, अपनी प्रगति चाहते हैं। हो सकता है हमसे काफी सीधा संभावना है इस बात की, हमको लग रहा है कि शर्ट पैंट पहन के धोती कुर्ता पहन के बैठा है, उसने पिछले रंग में कितनी भक्ति करी उसकी जानकारी हमको नहीं है। तो उन्नत वैष्णव मतलब वो जो होते हैं जो पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, हृदय का परिवर्तन लेकर आते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें श्लोक के हिसाब से कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे जब प्रभा जी उन्नत वैष्णव की बात करें तो एक्चुअली वो आचार्य की बात कर रहे हैं, आचार्य लोग। अभी आचार्य में फिर संप्रदाय आचार्य की बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप लोग समझ सकते हैं कि उनका कितना हाई डिग्री का कैलिबर होता है, रामाचार्य माधवाचार्य संस्था के जैसे जो संप्रदाय के आचार्य। लेकिन जो प्रामाणिक भक्त हैं, जो अधिगत भक्त हैं, वो भगवत नाम का प्रचार करते हैं, भगवत विधि का प्रचार करते हैं, तो यदि कोई उनका अपमान करता है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। एक और परिभाषा अपने भक्त की जो कि भाजपा ने बोली जाती है, छः अध्याय इसमें श्लोक जो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान बोलते हैं कि जो हर वस्तु में हर व्यक्ति में मुझे देखता है सबको मुझे देखता है वो उन्नत वैष्णव है। तो या फिर पंडित है समदर्शिना पांच अध्याय का अठारह श्लोक भगवत गीता, संपन्न है हस्त्री श्री जय को पंडित है समदर्शिना, जो सब लोगों में हाथी में सर्वत्र उसको प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे उन्नत भक्तों को अपनी प्रगति करते हैं, जो समाज में कुछ कार्य करते हैं, दूसरे भक्तों को उनका तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए। अब आती है बात हरे चर्चा पे, जहां पर बोला जा रहा है कि जब उन्होंने देखा कि त्रेता युग में जो वैष्णव पढ़े हैं दूसरे का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने सोचा अश्वग्रह की उपासना की स्तुति की जाए। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, अश्वग्रह ही क्यों चुना गया, कोई दूसरा तरीका भी चुन सकते थे, मनीषी बनाए, तो उसके लिए अश्वग्रह को उपासना के क्यों चुना गया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे दो मिनट के बाद। सिर्फ थोड़ा सा अश्वग्रह का गुणगान कर दें कि अश्वग्रह की उपासना इतनी शक्तिशाली इतनी पावरफुल होती है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि साधक अपने भगवान से उसके अंदर के जो भाव है भगवान को बोल सकता है, अपना शब्द को शेयर कर सकता है और भगवान भी वहां से आदान प्रदान करते हैं। तो अश्वग्रह की एक बड़ी शक्तिशाली चीज ये होती है कि व्यक्ति अपने सेंटिमेंट्स को, अपनी इमोशन को, अपनी भावना को भगवान के सामने प्रकट कर सकता है और भगवान भी इसको उसका आदान प्रदान करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 9 में बोलते हैं कि यदि कोई भगवान के सामने अश्वग्रह के सामने जाके प्रार्थना करता है तो भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेता है। क्या प्रार्थना देखो कर रहा है अश्वग्रह के सामने, तो बड़ा आसान तरीका भगवान की कृपा प्राप्त करने का, भगवान को प्रसन्न करने का, और विष्णु रूप उसके सारे पाप खत्म होते हैं और विष्णु रूप जाता है। ये गोपाल जी बोल रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन वंदना बस प्रार्थना करने से। ये गोपाल जी लेटर में बोलते हैं 18 मार्च 1969 में कि यदि किसी व्यक्ति को अश्वग्रह में सिद्धि प्राप्त करनी, परफेक्ट करना है, अच्छे से अश्वग्रह उपासना करनी है तो उसने एक योग्यता है। योग्यता क्या है कि आप जो भी अश्वग्रह की उपासना कर रहे हैं उसको लव के साथ करें, प्रेम के साथ करें, स्नेह के साथ करें, भावग्राही जनार्दना। तो यदि ऐसा कोई करता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो मन से उसका घर प्रयोग हो जाता है, मन से प्रयोग हो जाता है, शरीर प्रयोग हो जाता है, वो पूरी तरह अधर्म के पद पर स्थित हो जाता है। और फिर 7 अक्टूबर 1974 में प्रभुपाद जी लेटर में बोलते हैं कि साधक यदि कोई साधक है वो जितना अश्वग्रह का केयर कर रहा है, जितना उनकी सेवा कर रहा है, जितना वो अश्वग्रह की सेवा करता है, भगवान भी उस भक्त की उतनी सेवा करते हैं। जितना वो अश्वग्रह का केयर करेगा भगवान उसकी उतनी केयर करते हैं, ऐसा लेटर में प्रभुपाद जी बोलते हैं। जितना अधिक वो अश्वग्रह का मेडिटेशन करेगा, उतना उतना चिंतन करेगा, उतना अधिक वो जीवन के गोल को प्राप्त कर पाएगा, अश्वग्रह उसको जीवन के गोल की तरफ तेजी से ले जाएंगे। तो अब इस आज के तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ऐसा कैसा प्रतीत हो रहा है कि जो अश्वग्रह की उपासना है प्रभुपाद जी बेसिकली कनिष्ठा भक्तों के लिए बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे कि वो भक्त हैं जो कनिष्ठा भक्त हैं जो कि भगवान को केवल अश्वग्रहों में देखते हैं लेकिन दूसरी जगह नहीं देखते हैं और उन्नत वैष्णव के कार्यों को निंदा करते हैं, वो कनिष्ठ भक्त हैं। सिद्धांत बिल्कुल सही है। यदि कोई केवल भगवान को ये मानता है कि अश्वग्रह नहीं देख पा रहा है वो और उनके लिए दूसरे भक्तों को भगवान को नहीं देख पा रहा है, वो उनकी निंदा कर रहा है, तो कनिष्ठ भक्त है, तो अभी क्या किया जाए। तो इसके लिए अश्वग्रहों की संस्तुति की गई है। तो हरिनाम का भी गुणगान सुन लिया, अश्वग्रह का भी गुणगान सुन लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों में बेहतर कौन है, विच इज बेटर, विच इज बेटर। तो देखिए सिद्धांत अगर देखें तो हालांकि अश्वग्रह का अपना बहुत महत्व है, नो डाउट विशेष महत्व है उसका, लेकिन अगर सिद्धांत की बात की जाए, हमसे कहा जाए कि क्या हरिनाम लग करके जीवन की सिद्धि प्राप्त की जा सकती, तो यस नो डाउट, केवल संकीर्तन लग करके हरिनाम की सिद्धि प्राप्त करके जीवन की सफलता प्राप्त की जा सकती है, पर अश्वग्रह को पास होने से कोई इतनी अधिक विशेष आवश्यकता नहीं है, ये सिद्धांत है, क्योंकि संकीर्तन का कलयुग का युग धर्म है। तो अश्वग्रह अपने आप में यदि कहा जाए तो संकीर्तन यज्ञ में क्या अपनी शक्ति नहीं यस है उसमें, केवल अपने आप में संतुष्ट संकीर्तन यज्ञ हमको और दूसरों के पद्धति ज्ञान कर्म कारण इत्यादि कुछ करने अन्य गतिविधियां अन्य कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संकीर्तन यज्ञ कीजिए जीवन की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, ठीक है प्रॉब्लम है कि संकीर्तन है कि क्या साधक उस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। मुद्दा यह है संकीर्तन युग अपने आप में सर्व शक्तिमान है, युग धर्म से कोई संदेह नहीं है, उसको किसी पद्धति की किसी दूसरे पूजा पद्धति की आवश्यकता है ही नहीं सिद्धांत का देखा जाए तो। लेकिन क्या साधक जो प्रैक्टिस कर रहा है वो इस स्थिति में है कि उसको ग्रहण कर सके, क्योंकि वो तो दूसरों का तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है। इसके लिए अश्वग्रह उपासना दी गई है आचार्यों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, कि ठीक है अगर कोई साधक है वो सब जगह वस्तु में सब वैष्णवों में वैष्णव छोड़ जो बाहर के लोग हैं भक्त लोग हैं हमें भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहा है, परमात्मा रूप में नहीं देख पा रहा, ठीक है आप मंदिर में जाइए, मंदिर में देखिए भगवान को, मंदिर में भगवान को देखना उसके लिए आसान है, समझ सकते हैं भगवान मंदिर में है। और जब भगवान उपासना करेंगे तो क्या होगा, दो तीन चीजों से साथ होने वाली। रूपा जी ने दो चीजें खासतौर से बल दिया, एक क्या है शुचि स्वच्छता, दूसरा समय की पाबंदी। अब स्वच्छता की बात आती है, स्वच्छता में दो तरह की होती है, बाहरी और आंतरिक। तो जब आप सवेरे को उपासना करेगा तो क्या करेगा, दिन में तीन बार स्नान करेगा, स्नान नहीं करेगा तीन बार तो कम से कम अपने को शुद्ध तो रखेगा, तीन बार गायत्री करेगा, गायत्री से क्या होगा मन शुद्ध होगा, बुद्धि तीव्र होगी। तो स्नान कर रहा है बार बार, तीन बार गायत्री कर रहा है और भगवान के साथ सामने जाएगा तो उनके सामने कोई ग्रह विचार को सोच नहीं सकता है। और फिर आज सवेरे की उपासना में और विशेषता दी है कि उसमें मन और इंद्रिया पूरी तरह समा लग जाती है, अब्सॉर्ब हो जाता है। आप देखिए कृष्ण मंदिर में जाइए, जब भगवान का श्रृंगार करते हैं, उनको आश्चर्य को वस्त्र पहनाते हैं, तो पूरा एकदम चित्त मन इंद्रियां पूरी तरह विग्रह में पूरी तरह लगी रहती है। तो उसमें आश्चर्य में मन और इंद्रियों को भी लगाता है, उससे उसका मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। उसको समझ में आता मंदिर के अंदर भगवान है, अल्टर में रहता है, अल्टर के अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, वहां का वातावरण उस तरह का होता है। तो समय जब आश्चर्य में उपासना करता है धीरे धीरे उसकी चेतना उठने लगती है, उसके जो अनर्थ निवृत्ति है वो तेजी से होने लगती है। मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मस्त जो अनर्थ है वो दूसरों को दोष देख क्यों रहा है, क्यों निंदा कर रहा है, अनर्थ के कारण। या जो दूसरे अनर्थ है जो विष्णु चक्रवर्ती पाद अपने ग्रंथ मधुर कादंबरी में बताते हैं, दुष्कृतो अनर्थ और सुकृतो अनर्थ, वो सब अर्चविधि को उपासना करने से धीरे 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 कम होने लगते हैं, धीरे धीरे वो जाने लगते हैं और धीरे धीरे भक्ति प्रगति करने लगता है। तब उसे समझ में आता है भगवान के विग्रह में नहीं है, वो दूसरे विष्णुपुरों में भी है, जिनका मैं नाम जप कर रहा हूँ, जिनके लिए पूजा अर्चना कर रहा हूँ, जिनके उसमें तीन बजे उठ रहा हूँ मैं, मंगल आरती अटेंड कर रहा हूँ, भगवत सुन रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, वो भगवान के लोगों के हृदय में रहते हैं। तब मुझे समझ में आता है अश्वग्रह के संघ के कारण मास की चेतना शुद्ध होना चाहिए, तब वो समझ में धीरे धीरे से प्रकृति करेगा, भगवत बुद्धि सुनेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने जीव गोस्वामी ने भक्ति सांसी ठाकुर ने हमारे संप्रदाय में दोनों ही विधियां का सृष्टि करी है, भगवत विधि भी दी है आचार्य पद्धति भी दी है। क्यों, ताकि साधक तेजी से प्रगति करे, बोलते दोनों आवश्यक है। कि कलयुग में इतना बुरा हाल है, कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कले दोष विधेय राजन अस्थि एक महान हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे कलयुग। तो इसलिए हमारे आचार्यगणों ने दोनों पद्धति की संतुलित करेगी, दोनों करेगा तो तेजी से प्रगति करेगा, और धीरे धीरे भगवत कथा सुनेगा, हरि कथा सुनेगा, आचार्य को उपासना करेगा, शुद्धिकरण होगा, तो धीरे धीरे सब जगह वो हर जगह भगवान को देख पाएगा, घटनाओं में देख पाएगा, मेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है सब भगवान का हाथ है, प्रभु का हाथ है। तो इस तरह वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस वजह से जो है यहाँ पर भी इसको मेरे सब बता रहे हैं कि अर्चदेव की उपासना की गई है, लेकिन यदि कोई अनन्य भक्त है, इसका चित्त पूरी तरह भगवत विधि में रमा हुआ, जो भगवान रूप लीला नाम मग्न है, एकदम जो चौबीस घंटे भगवत अध्ययन कर रहा है, भगवत श्रवण कर रहा है, एक दिन क्लास नहीं छूटती तो उसके चलता मानो काटो तो खून नहीं है, प्रसाद खाना भूल जाता है, भगवत क्लास में भूलता है, और पूरी तरह उसको अर्ष देने की कोई आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि उतना उन्नत स्थिति में है, गुण रूप लीला पूरा खुला हुआ है, भगवान के राग स्तर पर है, राग भक्ति के स्तर पर है। यदि कोई ऐसा मिश्रण है जो कि बहुत दुर्लभ होते हैं, आसन से तुरंत आते बन नहीं पाता है, यदि कोई है उसका मैं अत्यंगत प्रणाम है, और उसको आचार्य की उपासना बोलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए आवश्यक नहीं है आचार्य की उपासना करे, क्योंकि उसने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उसने वो सिद्धि प्राप्त कर ली है कि तेषां सतत जनता भजता मां प्रीति पूर्वक स्तर आ चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वो भक्त जो आचार्य की उपासना कर रहा है वो कनिष्ठ है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी उन्होंने आचार्य की उपासना करी, उनके मंदिर है यहाँ पर, सनातन गोस्वामी उन्होंने आचार्य की उपासना करी, विश्वाचार्य के बाद उनके नीचे अपने आचार्य ग्रह थे, तो जितने आचार्य ने काफी गौरव आचार्य की उपासना करी, तो उनको कनिष्ठा को लेगी क्या, नहीं वो कनिष्ठा नहीं है, क्योंकि उस स्तर पर है कि वो दूसरे लोगों में भगवान को देख सकते हैं, भक्तों में, वैष्णवों में, अवैष्णवों में, दूसरे जीवों में, उनमें वो क्षमता है कि भगवान को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आचार्य की उपासना करते हैं तो वो कनिष्ठ नहीं है, उनको कनिष्ठ नहीं बोला जा सकता। तो फिर प्रश्न आता है कि सभी आचार्यगणों ने अर्चग्रह की उपासना क्यों नहीं करी, अभी रूप गोस्वामी नहीं करी, सनातन गोस्वामी नहीं करी, महावीर बोली बात सपने में आई, भगवान किसी को सपने में आके बोले कि मेरा अर्चग्रह की उपासना करो किसी कृष्ण को, तो वो करेगा नहीं क्या, बिल्कुल करेगा, भगवान साक्षात इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि मेरे उपासना कीजिए, निकालिए मुझे यहां से धरती से। माधव बोला तो महा महा महाभागवत है। तो यदि कोई आज मेरे को उपासना कर रहा है, सब जगह संबद्ध कृष्ण दर्शन कर रहा है, वो तो कनिष्ठ भक्त नहीं है, महाभागवत है। अभी हरदास ठाकुर है, अभी उन्होंने उपासना नहीं करी, ये कह सकता है हाँ नहीं करी, क्योंकि उनको ये लोग ये है, ये भगवान के नेत्र पार्षद है, भगवान से लगातार जुड़े हुए हैं और ये भगवान के आदेश के मिशन के लिए आते हैं। तो चूंकि उनको आदेश था चित्र महाप्रभु का, तुम्हारे नाम संकीर्तन के विग्रह के पास नहीं करें, लेकिन बाकी दूसरे को सामने नहीं करें। तो ऐसा आवश्यक नहीं है, कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है कि जो पुजारी लोग हैं वो कनिष्ठ है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पुजारी भगवत विधि भी करते हो, भगवत में अच्छी पकड़ हो, शास्त्र का अच्छा अध्ययन करते हो, शास्त्र के सिद्धांत को गहराई से समझते हो, आज मेरे लिए उपासना भी करते हैं, क्योंकि वो लगता है कि मेरे गौर भक्ति प्रगति करनी, मेरे गौर शुद्धिकरण की आवश्यकता है। लेकिन यदि कोई आज विघ्ने की उपासना करता है और वो केवल यही सोच रहा है कि भगवान तो केवल मंदिर में है और कहीं नहीं, तो फिर तो मतलब संदेह है कि वो क्या करेगा, तो दूसरों की निंदा करेगा, अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा, दूसरों से वो जब व्यवहार करेगा, बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा, तो उसका वार्तालाप एक दर्शन की तरह नहीं होता है, तो उसको तो कनिष्ठ भक्त बोलना ही पड़ेगा, वो कनिष्ठ भक्त ही है, फिर सब वैष्णव की निंदा कर रहा है। इसलिए आज तो निंदा आदि शून्य, अगर भक्ति में हरि नाम का रस लेना है, कीर्तन ही सदारी वाकई में करना है, तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है निंदा आदि शून्य है। अपमान तिरस्कार ये शब्द उन्नत वैष्णव जो प्रगति करना चाहता है उसके शब्द गोष्ठ पर रखता ही नहीं। हाँ कभी किसी कारणवश वो स्पष्टीकरण दे रहा है, वो एक अलग चीज है, वो अपमान की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। यदि शिक्षा लग रही है, लग रहा है उसको बताना है, गुरु महाराज को कुछ बताना है, वरिष्ठ वैष्णव को कुछ बताना है, तो वो एक अलग चीज है। और उसकी चेतना किसी की निंदा करने की नहीं होती, अपमान करने की नहीं होती। तो इतना अधिक महत्व है, इस वजह से यहाँ पर जो है अश्रेय को पास संस्कृति की कर रहे हैं मनीषीगण। जब उन्होंने सभी लोगों को देखा कि लोग जो है आपस में एक दूसरे का अनादर कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अश्रेय को पास की जाए, जिससे व्यक्ति जो उसके अनर्थ निवृत्ति हो, उसकी चेतना शुद्ध हो और उसके मन में जो दूसरी बीमारियां हैं, ईर्ष्या काम क्रोध इत्यादि बुद्धि समाप्त होकर उसका शुद्धिकरण होगा, तो धीरे धीरे प्रगति करेगा वो। तो अर्चवीर उपासना अपने आप में कनिष्ठ नहीं है, ये समझना चाहिए, अपने आप में बहुत महान है, क्योंकि वो भागवत विधि को बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। भागवत विधि में साधक को तरक्की करने में, प्रगति करने में अर्चवीर उपासना बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है। लेकिन ये बोला जाए कि दोनों में अगर इन दोनों युग धर्म कौन सा है, कौन सी श्रेष्ठ है, निसंदेह हरे नाम हरे नाम हरे नाम करोड़ों। तो ये तो सिद्धांत है, अर्चकर हरि नाम संकीर्तन को किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि रूप गोस्वामी सिद्धांत देते हैं नेक्टर इंस्ट्रक्शन में, बोला ना संकल्प प्रतिकूल से वर्जित है। जैसे भगवत विधि हम करते हैं, हरि कथा का श्रवण करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हर वो चीज ग्रहण कर लेनी चाहिए जो अनुकूल है। अभी ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे पता चल जाएगा कौन अनुकूल है, आचार्य गण बताते हैं। तो आचार्य गण बताया आप उपासना कीजिए, ये अनुकूल है आपकी भक्ति के लिए, इससे आप उन्हीं से प्रगति करेंगे। और अगर हम आचार्य जी के सिद्धांतों पर चलेंगे तो बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग भी अगर विश्वास से प्रभुपाद जी के शब्दों पर, उनके तात्पर्यों पर, आचार्य की वाणी पर विश्वास है, शास्त्र के कथन पर विश्वास है, तो वो दिन दूर नहीं है, हम भी उस स्तर पर आ सकते हैं, क्योंकि सब जगह हर वैष्णव में भगवान को देखेंगे, बल्कि हर व्यक्ति को वैष्णव समझेंगे, संभव है। कोई ऐसा मुझे सपना दिखाने वाली बात नहीं की जा रही है, ये सब चीज़ संभव तभी आचार्य ने दी हुई है। बस आवश्यकता है हमें गंभीरता की, हमें इस चीज को समझना है, कम से कम हम किसी का असम्मान नहीं, एक्चुअली किसी का सम्मान यथा सम्मान ना करना भी उसका अपमान ही है। मान तो वो सम्मान डिजर्व करता है, सम्मान उसको हम नहीं दे रहे, तो सम्मान वैष्णव को देना ही चाहिए। बिल्कुल मतलब ऐसा है कि क्या इंग्लिश में बोलते हैं अकॉम्पनीमेंट्स, जैसा अगर प्रसाद दे रहे हो तो नमक के बिना आनंद ही नहीं है, नमक जरूरी है, कंपल्सरी है, कोई एक्सेप्शन के बात अलग है स्वाद की वजह से। वैसे वैष्णव भक्ति भजन कर रहे हैं हम लोग, हरि नाम का जप कर रहे हैं, सिद्धांत मूवमेंट में है, तो हमको दूसरे भक्तों को सम्मान देना बहुत आवश्यक है। अभी सोचिए वैदिक समय में एक आधार स्तंभ भी यही इसी बात की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में कि कैसे दूसरे लोगों को सम्मान दिया जाए, ये बड़ा गुरु आधार स्तंभ होता था। इसमें सी बात को देखा ऋषि मुनियों ने, केवल कृष्ण का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया इसको, बड़ा गंभीर विषय था उनके लिए। कोई क्या कैसे कहा बात है भाई, नहीं करना कोई बात नहीं, हम नाम जब तो कर रहे हैं साधना करना, जो युग का जो धर्म तो हम कर ही रहे हैं ना। बोले नहीं, विष्णु का सम्मान नहीं करेगा कर नहीं पाओगे, आपका प्रयास विफल हो जाएगा क्योंकि भगवान आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। इस वजह से अष्टविध उपासना का संस्कृति यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सैद्धांतिक देखें तो अष्टविध अपने संकीर्तन अपने आप में परिपूर्ण है, उसको किसी पद्धति किसी मार्ग की आवश्यकता है ही नहीं,
बिल्कुल नहीं।
और इसका एक समाधान और भी है, कोई कहेगा कि कुछ भी प्रैक्टिकल टिप्स हो, कभी भी भक्तों से जो है अपमान हो जाता है, कभी भी मुझसे कुछ निकल जाता है, गुस्से में आ गया, भूल दिया गया है, तो सब कर्मी श्री भागवत में देती है। चौथे स्कंद के आठवें अध्याय के 34वें श्लोक में नारद मुनि सलाह दे रहे हैं, बताते ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं
गुणांकार
कि यानी जब कोई व्यक्ति किसी अपने से योग्य पुरुष से मिले, ऐसे पुरुष से जो उनसे अधिक योग्य है, गुणों में अधिक है, तो मिलते समय उसको बहुत अधिक प्रसन्न होना चाहिए, वाह प्रभु जी मिल गया आनंद आ गया, ऐसा उसको हृदय में फील करना चाहिए। बिल्कुल जैसे मानो कि कहते हैं ना अंधे को तो आंखें मिल जाए, वैसे ही अगर अपने से गुणों में अधिक है तो वैष्णव मिलकर तुरंत हृदय में जबरदस्त प्रसन्न होना चाहिए। यदि ऐसा वो कर रहा है, फिर दूसरा है गुणा अधमान, गुरु में कम है, योग्यता में उससे कम है, तो उसके साथ कैसा भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, स्नेह का भाव रखना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए कि मैं उसको भक्ति में प्रगति कैसे सहायता कर सकता, करुणा होनी चाहिए। और यदि सबसे देखिए जिनको मानते हैं हमारे सुपीरियर हैं, हमसे योग्य हैं, उनका सम्मान करना आसान है, जिनको हम मानते हैं कि हमारे जूनियर हैं या मेरे से योग्यता में कम है, उनके प्रति करुणा का भाव रखना, दया का भाव रखना आसान है। कठिन क्या है, बराबर के लोग मिलते हैं, टक्कर के लोग मिलते हैं, जो बिल्कुल इक्वल लोग मिल रहे हैं, वहां अहंकार थोड़ा सा बीच बीच में वो बोलता है, कुछ बोला सब इससे बेहतर हो। तो बताते हैं जब समाना गुणों में समान वाले लोगों से मिलते हैं, बराबर के लोगों से मिलते हैं, तो क्या भाव होना चाहिए, मैत्री का भाव होना चाहिए। तो जो साधक ये तीन चीजें करे, अपने से श्रेष्ठ लोग हैं उनको देख के प्रसन्न हो जाए, और जो नीचे के लोग करुणा का भाव रखे, और जो समाज स्तर के लोगों से मैत्री का भाव रखे, तो इस भाव से बहुत जल्दी उभर जाएंगे, जो लगा सम्मान करना, तिरस्कार करना, निंदा करना। समय हो चुका है, आप सब लोगों का धन प्रसन्न का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। श्रीपाद की जय, ग्रंथाश्रम भागवतम की जय, वंदे मातरम।